हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी रणविजय जल्दी से बोला था, दादी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो मैं उनसे खुद बात कर लूंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि उनका आंसर पॉजिटिव ही होगा, मुझ पर भरोसा रखिए। ये बात रणविजय ने इतने भरोसेमंद तरीके से कही कि दादी ने तुरंत उसे गले से लगा लिया था और बोली थी, बेटा प्लीज तुम बस हमारा एक काम कर दो, तुम नहीं जानते कि इस वक्त हमें कैसा लग रहा है, हम चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द सिद्धार्थ छलक की यादों से बाहर आए और आकांक्षा से शादी कर ले। ये सुनकर रणविजय अंदर ही अंदर मुस्कुराया था और बोला था, फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब ठीक कर दूंगा और मैं खुद आपको ओबेरॉय परिवार से बात करके बता दूंगा, क्योंकि ठीक आधे घंटे पहले ही आकांक्षा ने रणविजय की शर्त मान ली थी। उसके पास उसकी शर्त मानने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था, और इसीलिए अब दादी के पास सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी की बात करने के लिए रणविजय आ गया था। फिलहाल दादी ने मुस्कुराते हुए रणविजय को थैंक यू कहा और अपने कमरे में चली गई। दादी के जाने के बाद रणविजय का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो गया था। वो सिद्धार्थ खुराना को लालच भरी नज़रों से देखने लगा था और मन ही मन बोला था, ये तो सिर्फ थोड़ी सी तड़प है महबूब के जुदा होने की, सोचकर देख सिद्धार्थ खुराना, जिस महबूब की जगह तू जिसे लेकर आ रहा है अगर उसे किसी और के साथ सोते हुए पाएगा तब तेरे साथ क्या होगा, सोचा है तूने कभी? ये सोचते हुए रणविजय बेहद ही खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी ओर पूरे के पूरे मल्होत्रा परिवार ने एक साथ हंसी खुशी के माहौल में खाना खाया था। आरव जी ये सब देखकर काफी हद तक भावुक हो चुके थे और अचानक पूरे परिवार के बीच में खुद को रोक नहीं पाए, उनकी आंखें भर आई थीं। अनामिका ने तड़प कर तुरंत अपने पिता का हाथ थाम लिया था और बोली थी, क्या बात है पिताजी, दादा मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, आप मेरे हीरो हैं, सुपर हीरो, आप जानते हैं मैंने बचपन में आपको कभी देखा नहीं लेकिन आपकी तस्वीर से हमेशा बातें किया करती थी, अपने दिल की हर बात आपसे कहा करती थी, और अब देखिए आप मेरे सामने हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। झलक बिना किसी इमोशन के दोनों बाप बेटी को देख रही थी। तभी आरव जी बोले थे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन मुझे मेरा परिवार वापस मिलेगा, तुम जानते हो मैं उस जेल की कालकोठरी में पूरी तरह से बीमार हो चुका था, अलग अलग तरह के ख्याल आने लगे थे, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी बेटी यानी अपनी झलक को देखा उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में जिंदा रहने की एक नई चाह पैदा हो गई हो। जिस तरीके से पूरे मीडिया के सामने, पूरे समाज के सामने मेरी बेटी को दोषी ठहराया जा रहा था, उसे भला बुरा कहा जा रहा था, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब इस जेल में ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन उस दिन झलक को टीवी पर देखने के बाद मेरे शरीर में एक बार फिर से जीने की इच्छा जन्म ले चुकी थी, और अब मैं जीऊंगा और अपनी ही आंखों से देखूंगा उन सभी परिवारों की बर्बादी जो पूरी तरह से मेरी बेटी का दिल तोड़ने और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। वहीं झलक मन ही मन सोच रही थी, मेरे तो फिर भी दिल के साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, लेकिन इनकी तो पूरी जिंदगी ही उस ओबेरॉय परिवार ने बर्बाद कर दी। तभी स्नेहा जी तुरंत आरव को देखकर बोली थी, शांत हो जाइए, आ जाइए, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा संभलना चाहिए, और वैसे भी आपके पास झलक जैसी बेटी है, आप नहीं जानते मेरी बेटी कितनी बहादुर है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी आपके खोए हुए दिन तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर वादा कर सकती हूँ कि वो आपके दुश्मनों का ऐसा हाल करेगी कि आपके दिल को अपने आप ही ठंडक और सुकून मिलेगा। जैसे ही स्नेहा जी ने बड़े ही मान सम्मान और पूरे आत्मविश्वास के साथ झलक की ओर देखते हुए ये कहा, झलक ने उनकी आंखों में अपने लिए गहरा विश्वास देखा। तुरंत ही रोहन खुशी से बोल पड़ा था, हाँ हाँ, आप नहीं जानती मेरी दीदी कितनी ब्रेव है, वो तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, छक्के। ये बोलकर वो खुशी से उछलने लगा था। रोहन को इस तरह बोलते देख सभी मुस्कुरा दिए थे। वहीं अब सौरव जी थोड़ा सा मायूस होकर बोले थे, मेरी बच्ची मैं जानता हूँ कि कितनी सारी परेशानियों का सामना तुम्हें करना पड़ा है। पर सौरव जी थोड़ा सा मायूस होकर बोले थे, लेकिन मुझे पता है तुम हर मुसीबत और हर सिचुएशन से लड़ लोगी। तभी दादाजी बोले थे, अरे आप सब लोगों को इतना कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बच्ची कितनी बड़ी है ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, वैसे भी इसमें हमारा खून दौड़ रहा है और हमें अपने खून पर पूरा का पूरा भरोसा है, और वैसे भी हम इन्हें अकेडमी में सिर्फ दिमागी रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी मजबूत होने के लिए भेज रहे हैं, वरना हम जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये हर हाल में हर रूप में एकदम मजबूत बनकर निकलेंगी। तभी अनामिका ने दादाजी को गले से लगाकर कहा था, थैंक यू सो मच दादाजी हम पर इतना विश्वास करने के लिए, और तुरंत ही वो आगे बढ़कर झलक के हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोली थी, ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है झलक, ये केवल तुम्हारे मान सम्मान की लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे पापा की बर्बाद जिंदगी की भी लड़ाई है, और देखना, हम दोनों बहनें मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगी। और हाँ दादाजी, मैं जानती हूँ कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और भावेश में आकर मैंने वहाँ आपका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन अब मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी और अपनी ट्रेनिंग को पूरी तरह से सीरियस लूंगी। इतना ही नहीं, आपने हमें एक महीने का वक्त दिया है, तो पूरा एक महीना अब हम घर नहीं आएंगे, हम वहीं रहेंगे। जैसे ही अनामिका ने यह फैसला सुनाया, झलक ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। तब दादाजी ने तुरंत अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा था, अरे हम जानते हैं, और वैसे भी मार्शल आर्ट तो हमारे खून में है, खून में। ये बोलकर दादाजी ठहाका लगाकर हंस दिए थे और सभी मुस्कुरा दिए थे, सिवाय झलक के। ऐसा लग रहा था कि झलक के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। झलक तुरंत ही वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। झलक के जाने के बाद स्नेहा जी भारी आवाज में बोली थी, मेरी झलक के होठों पर हमेशा मुस्कुराहट सजी रहती थी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, उसने हर हालात से मुस्कुराकर लड़ना सीखा था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि उन बदमाशों ने मेरी बेटी की मुस्कुराहट भी छीन ली है। देखना, उस ओबेरॉय परिवार और खुराना परिवार को लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, वे लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। ये कहते कहते स्नेहा जी इमोशनल हो गई थी। तभी अनामिका बोली थी, आंटी जी आप परेशान मत हुई, वैसे भी अब हम सब झलक के साथ हैं, और इसी वजह से मैंने झलक की सिचुएशन देखते हुए ही एक महीने तक अकेडमी में रहने का फैसला किया है। देखिएगा वहां जाकर वो खुद को कितना मजबूत बनाएगी, एक बार वो मानसिक रूप से मजबूत हो गई फिर देखना कि वो किस तरह सबके छक्के छुड़ा देगी। वैसे भी मुझे उसकी ताकत का अच्छी तरह अंदाजा है। ये बोलकर अनामिका एक बार फिर से झलक की फाइटिंग स्किल्स, उसका दबदबा, उसका लड़ना झगड़ना, इन सब ख्यालों में खो गई थी। फिलहाल वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे भी अकेडमी में रहने के लिए पैकिंग करनी थी। वहीं दूसरी ओर आर्यन रायचंद इस वक्त अपने घर में बैठा हुआ था। धीरज जी उसे देखते हुए बोले थे, आखिर कब तक मातम मनाएगा उस लड़की के जाने का? अरे जिस परिवार का वो हिस्सा थी उन्होंने तो उसे कब का भुला दिया, फिर तू बार बार उसके साथ ली हुई सारी तस्वीरें क्यों देखता रहता है? जब से झलक के मरने की खबर मिली है तब से तू बस उसके साथ बिताए हुए पलों को ही याद कर रहा है।
ये सुनकर आर्यन ने तुरंत अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता उसे घूरते हुए बोले थे, आखिर क्यों मातम बना रहा है उस लड़की के मरने का? उसे गए 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और जिस परिवार के साथ उसका रिश्ता था वे सब उसे भूल चुके हैं। मैंने तो खुद पता लगाया है कि बहुत जल्दी सिद्धार्थ खुराना की शादी भी होने वाली है। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ तुम गधे की तरह बैठे हो, सुबह से बस यही सब सोच रहा है। ये सुनकर आर्यन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला था, आप क्या जाने पिताजी, अगर उस वक्त मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर पाता तो आज मुझे इतना ज्यादा गिल्ट महसूस नहीं होता।